मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 12 फरवरी 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब जीवन के फिजिक्स के बारे में जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करते करते हम काफ़ी आगे निकल आए हैं, लेकिन अभी काफ़ी आगे का रास्ता तय करना है। तो आज मैं आपसे अनुशासन के एक दूसरे ऐसे पक्ष पर बात करना चाह रहा हूँ जो इनफैक्ट अनुशासन को बहुत अधिक चैलेंजिंग बना देता है। देखिए, अनुशासन के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते भी हैं, मैंने तो कल जो थोड़ी सी बातें की थी वो आपको एक तरह से फिर से याद दिलाने के लिए बातें की थी। अदरवाइज आप जानते हैं कि जो पूरी प्रकृति है वो अनुशासन के तहत चल रही है, यानी कि पूरे के पूरी जो हमारी प्रकृति है वो ऑटो मोड में है, इसको कोई चला नहीं रहा है, इसका सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि वो अपने आप चलती रहती है। और यदि इसमें कोई जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो वो गड़बड़ी हमें एक आपदा के रूप में दिखाई देने लगती है। बहुत सिंपल सी बात है। तो जो सिस्टम है उस सिस्टम से जरा भी हम डेविएट होते हैं, उसको खंडित करते हैं, तो कुछ न कुछ मामला गड़बड़ होगा ही होगा। अब ये बात अलग है कि जो मामला गड़बड़ होगा वो आपके फेवर में होता है या आपके अगेंस्ट होता है, लेकिन मान करके चलिए अगर आप अपने वर्तमान से संतुष्ट हैं तो जो कुछ भी होगा वो अगेंस्ट ही होगा, आपके विरोध में ही होगा, उससे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप जानते हैं। अनुशासन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमें बता दिया गया है, एक लिस्ट थमा दी गई है, आपको ये काम करना चाहिए, और ये जो लिस्ट हमें थमा दी गई है हमारे हाथों को नहीं थमाई गई है, हमारे दिमाग को थमा दी गई है, हमारे संस्कारों को थमा दी गई है, और हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, जैसे प्रकृति से अपेक्षा की जाती है कि ऐसा ऐसा प्रकृति करेगी, सूरज अपने क्षेत्र में ऐसे घूमेगा, पृथ्वी ऐसे घूमेगी, चंद्रमा ऐसे घूमेगा, सूरज स्थिर रहेगा, सूरज तो घूमता नहीं है, बाकी दूसरे जो ग्रह घूमते हैं, यानी कि सबका अपना अपना कारोबार है और कह दिया गया है कि भाई आप अपने अपने काम को निभाते रहिए ताकि यह दुनिया का काम चलता रहे। दोस्तों, यहां मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये कि देखिए, जब चीजें बिल्कुल स्थिर हैं, हमारे दिमाग में एक लिस्ट डाल दी गई है और हम उस लिस्ट के अनुसार काम करते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ ही नहीं, पूरे जगत के साथ प्रॉब्लम है। अरे भाई, प्रकृति है, तुम क्यों टाल मटोल करती हो? जैसा तुमसे कहा गया वैसा करती रहो, लेकिन वो भी तो ऐसा नहीं कर रही ना, उसमें भी विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब उसके विस्फोट के रूप है। आप कह लीजिए प्रकृति के क्रोध है, तूफान उसकी गर्जना है, उसका आक्रोश है, तो उसमें ऐसा क्यों हो जाता है? उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये मान करके चलते हैं कि प्रकृति के पास कोई चेतना नहीं है, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं चट्टान के पास कोई चेतना नहीं है, नदी के पास कोई चेतना नहीं है, और चलिए वनस्पतियों के पास चेतना है, तो ये भी प्रकृति के हिस्से हैं। तो जिसके पास चेतना नहीं है, जो सोच विचार नहीं सकता, तो अनुशासन में रहेगा, क्योंकि देखिए अनुशासन भंग कहां होता है? वहीं भंग होता है जब हम उस पर विचार करने लगते हैं, सोच विचार करने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, और तर्क वितर्क करके उसे रिजेक्ट करने लगते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं ये सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, बस वहीं हम अनुशासन को भंग करने लगते हैं। तो प्रकृति के साथ तो ऐसी कोई चेतना है नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति को बिल्कुल अनुशासन में रहना चाहिए, लेकिन प्रकृति भी अनुशासन में नहीं रह पाती। उसके पीछे कारण क्या है? फ्रेंड्स, हम इस कारण को समझने की कोशिश करते हैं और यही अनुशासन की सबसे बड़ी चेतावनी है, सबसे बड़ी चुनौती भी है, दोनों है। देखिए, हम कहते हैं कि चेतना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम गलत कह रहे हैं। एक सिंपल सी बात कि जो चीज गतिशील है, जो गति में है, जो मोमेंट में है, उसमें चेतना है। देखिए, अब उसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आप एनालिसिस मत कीजिएगा। एक पत्थर का टुकड़ा है, पड़ा हुआ है, आपने उसे ठोकर मारा और पत्थर का टुकड़ा लुढ़कने लगा, जब लुढ़कने लगा तो वो गतिशील हो गया। अब जब गतिशील हो गया है तो देखिए, जो पत्थर का टुकड़ा लुढ़क रहा है बिना एनर्जी के वो नहीं लुढ़क सकता, आपने ठोकर मार करके उसमें एक गतिज ऊर्जा पैदा कर दी है ना, गतिज ऊर्जा डाल दी, वो गति की ऊर्जा उसमें आ गई है, और जैसे ही ऊर्जा आई तो वो चेतन हो गया, वो चेतन है। और वैसे भी छोटा पत्थर बड़ा पत्थर बन रहा है, तो क्या बिना चेतना के छोटा पत्थर बड़ा पत्थर बनकर के एक दिन चट्टान में परिवर्तित हो गया? यानी कि गति उसमें है और साथ ही साथ उसमें लगातार परिवर्तन भी हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है। एक बड़ा पत्थर छोटा पत्थर बन जाता है, एक छोटी चट्टान आगे चलकर के बहुत बड़ी चट्टान बन जाती है, एक छोटा टीला लगातार बड़े टीले के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या बड़ा टीला पता लगा कि धसकते धसकते एक छोटे टीले के रूप में और कभी बिल्कुल समतल जमीन बन जाता है। तो यह है परिवर्तन। इसका मतलब हुआ कि जो गति है और जो चीजों में परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि उनमें भी चेतना है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, चेतना को अब उस तरह से कॉन्शियस जो सोच सकता हो, जो विचार कर सकता हो, मैं उस रूप में नहीं ले रहा हूं, मतलब उनमें लगातार एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। और वैसे भी मित्रों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अणु परमाणु है, मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूम ही रहे हैं ना, तो हमें तो वो जो छोटा सा एकदम सूक्ष्म कण जिसे आप माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से देख पाएंगे, देख पाते हैं कि नहीं पता नहीं, उसमें भी लगातार आप यूं कह लीजिए कि मूवमेंट हो रहा है, लगातार गति हो रही है एक छोटे से कण में। और क्वांटम जो फिजिक्स है, क्वांटम थ्योरी तो ये मानती है कि इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में कोई ऐसा अणु है ही नहीं जिसमें गति ना हो। तो मुझे लगता है कि लाइफ को समझने के लिए जो एक बहुत बड़ी अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए वह यह कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो गतिशील हैं। वो आपको गतिशील होती हुई दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है वो एक अलग बात है, क्योंकि जिनमें आंतरिक गति है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। अब अणु के अंदर आंतरिक गति है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब घूम रहे हैं तो आपको दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, अगर आप पत्थर को लुढ़का देते हैं तो लुढ़कता हुआ पत्थर तो आपको गतिशील दिखाई दे रहा है, तो ये बाह्य ऊर्जा का आपने इस्तेमाल किया, बाह्य शक्ति का इस्तेमाल किया तो आपको गति दिखाई देने लगी। लेकिन आप चाहे इस्तेमाल करें ऊर्जा का, न करें, दबाव का इस्तेमाल करें न करें, लेकिन हर अणु अंदर से गतिशील है। दोस्तों, इसके माध्यम से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसके माध्यम से मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो गति ही है जो अनुशासन को ज्यादा चैलेंजिंग बना देती, इस पर मैं कल विस्तार से बात करूंगा। आप आज के इस अपने लाइफ मैनेजमेंट को, मैं गीता में जो कृष्ण ने एक वाक्य कहा है, बहुत जबरदस्त वाक्य है, उससे समाप्त करना चाहूंगा। गीता में कृष्ण ने कहा है, यदि मैं कर्म से विरत होता हूं, मैं हिंदी अनुवाद आपको पढ़ा रहा हूं, यदि मैं कर्म से विरत होता हूं तो इस विश्व का नाश हो जाएगा। सोच करके देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं कर्म करना बंद कर देता हूं, कर्म करना छोड़ देता हूं, तो ये जो पूरी की पूरी दुनिया है ये नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो दुनिया बची हुई है ये कर्म के कारण ही बची हुई है। अब आप अपने हिसाब से अब ये अर्थ लगाइए कि ये कर्म क्या है, कर्म गति है या कर्म स्थिर है, कर्म स्थाई है, कर्म अस्थाई है, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तो सीधी सी बात है गतिशील आपको होना ही पड़ेगा। यानी कि अगर इस पृथ्वी से कर्म हटा दिया जाए, इस पृथ्वी से, इस प्रकृति से गति को समाप्त कर दिया जाए तो सीधी सी बात है कि ये प्रकृति, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न पर आप सब भी विचार करें और मुझे इसके साथ ही इजाजत भी दें। नमस्कार।